भक्ति का क्रम विकास इस पर मैं बोल रहा था। समय तो अधिक नहीं, तो अभी मैं दो एक बातें बतलाना चाहता हूँ जो कि आपके जीवन में स्मरण रहे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य है। किसी को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, भगवान को देखा नहीं तो उसका ध्यान क्या करोगे। और यदि आराम का ध्यान करते हैं कि धनुष बाण लेकर के हैं तो वो काल्पनिक होगा। यदि कभी राम का दर्शन किया तब तो करेंगे, इसलिए विग्रह को प्रणाम करो, इनको भगवान मानो, ये तो ठीक है। कल्पना करके उनकी मूर्ति मत बनाओ, कृष्ण का काल्पनिक रूप मत बनाओ, वो होने से ठीक नहीं होगा। इसलिए बतला कलयुग केवल नाम आधार, जैसा रूप होगा कृष्ण का है राम का है वो अपने आप आ जाएगा, वो बड़े दयालु। चेष्टा करने से नहीं, शरणागत उनका बन जाओ, सर्वस्व उनको दे दो, सर्वधर्मान परिचर्य। इसलिए कलयुग में नाम है, कलयुग में दान तप जप ध्यान, अरे और की तो बात क्या। महाजोगी लोग ध्यान करते हैं, अस्पराओं के एक नुपुर के झंकार पर ही उनका ध्यान टूट जाता है। विश्वामित्र को देखिए, नारद जी को देखिए, बड़े बड़े तपो ज्ञानी सबको देखिए। एक कोई यहां ध्यान करे तो हम सहसा हरे कृष्ण जोर से कीर्तन करेंगे, उनका ध्यान कहां लगेगा। और कोई कुछ कर रहा हो और हम जोर से खूब उच्चारण करते हुए हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, अथवा हम और कोई नाम कर रहे हैं, भगवान राम का नाम कर रहे हैं, जोर जोर से करो तो रेल पास हो जाएगी, जहाज पास हो, कुछ भी पता नहीं रह गएगा। इसलिए कलयुग में नाम है सबसे, ध्यान अपने आप राम का आ जाएगा। जहीं राम या कृष्ण कहेंगे, कृष्ण का रूप राम का रूप अपने आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसा अगर रियलाइज करा देंगे। अभी बहुत से लोग यज्ञ कराने आते हैं, धोखा देकर के रुपया बटोरने के लिए आते हैं, ये समझ रखिए। तो बिना पैसा कर दिया यज्ञ करा दे तो मैं मान लूं, बस पैसे बटोरने की हालत में। कलयुग में ये यज्ञ नहीं, नाम यज्ञ केवल है। यज्ञ में शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो निस्वार्थ होकर के यज्ञ का मंत्र उच्चारण कर सके, नमः के बदले में नमो कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे, वो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। अरे कहीं शुद्ध घी मिलेगा, चर्बी डालडा इत्यादि मिला हुआ घी मिलेगा, कहीं आम की लकड़ी शुद्ध मिलेगी। मन शुद्ध है यज्ञ करने वाले का तो फिर इसमें यज्ञ नहीं होगा। और अजामिल जैसा पापी दुराचारी व्यक्ति भी साधु संघ में आकर के हरिनाम कीर्तन कर सकता है, रात में करो दिन में करो, चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय फिसलते समय भी राम राम करती है, बस हो गया। इसमें कोई कुछ लगता है, इसमें पैसा लगता है। दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, सवेरे करो, छठी करते हुए करो, कोई भी बात नहीं, सभी काम हुआ। हनुमान का एक विचार है, जहां कोई राम नाम करेगा जरूर पहुंच जाएंगे। एक समय की बात है, नारद जी से एक तेली की भेंट हुई। तेली जानते हैं, तेली जो तेल फेरता था पहले, अब तो वो बड़े बड़े मशीनों में तेल फेरते, बैल को लगा दिया, बैल का आंखों को ऐसे लगा दिया और उसको घूमता था, उस पर चढ़ करके हाथ 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 हाँकता था बैलों को, तो उसको फुर्सत नहीं मिलती थी दिन रात, वो तेल ही पीता रहता था। हनुमान जी कहे, भले व्यक्ति, अरे तुम कभी भी तू नाम तो करो, हरि नाम करो, कुछ मुझको फुर्सत नहीं मिलती है, तटी करते समय क्या करता है, ऐसा कुछ नहीं, तो उसी समय करो, तो उस समय करने वहाँ जरूर हो जाएगा। तो लोटा लेकर के मैदान में शाम के समय में गया, अपना कार बार बंद करके और वहाँ पर लोटा रख करके चट्टी करने लगा और वहीं पर राम 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 राम। इतने में राम करते हैं हनुमान जी आ गए, कहिए ये बड़ा बदमाश आदमी, अपवित्र होकर के टट्टी करते समय ये हरि नाम करता है, स्नान करके नहीं करता है, इसलिए एक जोर से लात मारी। जिस लात के मारने से रावण झिमिलिया खा गया, गिर गया, कुंभकर्ण जैसा विराट आदमी वो गिर करके मूर्छित हो गया, मेघनाथ जैसा व्यक्ति थरहरी कंप हो गया उसको, और ये तेली को कुछ भी नहीं हुआ, वो हर राम 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 कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान ने कि ये क्या बात, आज इतनी जोर से इसको लात मारी, इसकी कचूमर नहीं निकल गई। कचूमर निकलना जानते हैं? पीस देना, हिंदी के शब्द हैं। इसका कुछ भी बिगड़ा ही नहीं, क्या बात है। सोचते वहां से चले गए, वो भी उठ करके चला गया, ये भी चले गए, राजभवन में राम के यहाँ पर पहुंचे। तब तक तो रात हो गई है, शाम की ये बात थी, रात हो गई। राम जी पलंग पर लेते हुए ऊँह आह कर रहे हैं, कराह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आज प्रभु हमारे कराह क्यों रहे? निकट में गए, प्रणाम करके बोले, प्रभु आप कराह क्यों, क्या दर्द हो रहा है? तो तुमने एक लात खूब जोर से मारी और फिर पूछ रहा कि आप क्यों कराह रहे हैं। तुम्हारी लात पा करके, मार खा करके कौन आदमी है जो कराहे नहीं? दूसरा होता तो मर गया होता। मैंने कहा कि आपको मैंने लात मारी, ये तो कभी संभव नहीं है। अरे तेली को मारा उस समय, वो राम राम कर रहा था, तो हाँ कर रहा था, तो राम राम कर रहा था, तो मैं उसके अंदर में प्रवेश तो मैंने किया ना। राम नाम और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। कृष्ण नाम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, इस चीज को समझो। तो जिस समय वो राम नाम कर रहा था, मैं उसके अंदर में पहुंच गया, तो वो लात हमारे ऊपर में लगी, हमारी कमर टेढ़ी हो गई है। हनुमान जी ने कान पकड़ा, अब कहीं नहीं कहीं, इसलिए पवित्र अपवित्र शक्ति से करते हुए भी, स्नान करने की बात, उसके पहले भी, आधी रात को, देर रात को, दिन में, जब कभी समय मिले तभी भगवान का नाम कर सकते, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। जो राम नाम कर रहा है, कृष्ण नाम कर रहा है, वो तो हजारों लाखों बार स्नान उसका हो गया। इस विषय को ठीक रखना, ऐसा सरल शुभ सहज नाम में जिनको रति रुचि नहीं है वो दुर्भागा है, उनके समान जगत में कोई दुर्भागा। इस चीज को इसलिए आप लोग भी जब मिले, कलयुग में इस नाम के अतिरिक्त आप पवित्र हो ही नहीं सकते, पवित्र नहीं हो सकते, वातावरण सब गंदा है। इसलिए जिस अवस्था में जो व्यक्ति है वो बिना पैसे का, आज स्त्री कमाती है, बेटी कमाती है, बेटा कमाते हैं, बाप कमाता है, सब कमा करके भी घर का पूरा नहीं पड़ता। अब पहले एक मुखिया काम करता था, सब घर घर का पालन पोषण करता था, आज मान ले कि कमाई करता है खूब अधिक, तो एक बिल्डिंग मंगाने में भारत से मार्बल आएगा, इटली से मार्बल आएगा, न जाने कहाँ कहाँ की क्या चीजें होगी, उसकी सारी कमाई तो उस बिल्डिंग में लग गई, खाने के लिए कुछ बचा नहीं। और स्त्री के पास में काफी माल था, वो दूसरी जगह चली गई, ठीक, इसलिए कमाई पूरी नहीं पड़ेगी भाई। इसलिए बिना पैसे का हरि नाम, पवित्रता का भी विचार नहीं है, जहां रहो जैसे रहो भगवान का नाम, इसे सहज ही नहीं, जो कुछ होना होगा सब इसी के द्वारा हो जाएगा, जन्म मृत्यु सब पार कर। अंत में एक छोटी सी आराम की कथा बतला करके मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करूंगा। रामचंद्र जी भागवत की तो कथा कह रहा था, किंतु इसमें राम का भी प्रसंग, और विशेष करके ये स्थान भी रामचरितमानस था, इसलिए थोड़ी सी उनकी कथा से ही मधुर ही न समापये मधुर रूप में उनकी कथाओं को। इस कथा को सुनने से भी आपके चित्र पवित्र हो जाएंगे और भगवान में जरूर मन लगेगा। रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात रावण को वंश कर अयोध्या में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्ष राज्य किया, हनुमान इत्यादि परकर इनके साथ। 11,000 वर्ष के बाद में उनकी इच्छा हुई, अब लीला का संगोपन करेंगे, अब हमको जाना है बैकुंठ में, इसलिए कोई बहाना ढूंढने लगे। जैसे आप लोगों ने, आप लोग जानते होंगे कि रावण ने असल सीता को नहीं चुराया, किसको चुराया? माया सीता को। रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में रख दिया था, इसलिए रावण विजय के पश्चात में लंका में अग्नि में जो सीता जी को जलने के लिए जो गई, इसका वो मतलब जलाना नहीं था, बल्कि सीता जी जो अग्नि में थी वो परछाई अग्नि में चली गई और असल सीता जी को अग्निदेव लेकर के राम को समाप्त। असल में सीता जी तो राम से कभी विजुक्त हो ही नहीं सकती, ये लोगों को दिखलाने के लिए था। उसी तरह से एक और कुछ शिक्षा के लिए 11,000 वर्ष के बाद में एक धोबी अयोध्या का, वो अपने स्त्री को शाम को 1,00,000 मार, इतनी रात हो गई कहाँ थी, मैं राम नहीं जो लंका में एक वर्ष या कितने दिन रही रावण के पास में और फिर उसको रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा, ये कहकर से लात मार करके घर से बाहर चली। राम के जो CID थे रामचंद्र जी से आकर के ये बात को कहा, कुछ और CID जो उनके थे कुछ ऐसी ही बातें जो प्रजाओं में हो रही थी वो सुनी, बस सीता जी को त्याग करने के लिए संकल्प लक्ष्मण जी के द्वारा उनको भेजवा दिया जंगल में सदा के लिए प्रत्याग कर, सदा के लिए नहीं माने उस लीला के अंतिम समय के लिए प्रत्याग। सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम के किनारे पर कहीं पास में गंगा के तट पर छोड़ा, सीता जी वहां पर बेहोश हो गई। प्रसंग बहुत लंबा है, मैं बहुत संक्षेप करके बतला रहा हूं। सीता जी उस समय में गर्भवती थी, वाल्मीकि जी अपनी कन्या समझ करके उनको ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। उनके आश्रम में ही लवकुश का जन्म हुआ और उनका नाम लवकुश था। दो ये संतान एक ही दिन में पैदा हुई, जमज संतान। कुछ दिनों के बाद में ये लोग बड़े हुए, सीता जी अपने हाथों से इनको अस्त्र का अभ्यास कराती और सारी शिक्षाएं देती और वाल्मीकि जी इनको सभी कुछ पढ़ाते थे, अस्त्र शस्त्र सदाचार शास्त्रों का तात्पर्य अपने यहाँ से पढ़ाते थे और वाल्मीकि रामायण इनको कंठस्थ रामायण का याद करा दिया और कैसे इसको गाया जाता है वीणा यंत्र पर इसको भी बतलाया। एक तो राम ही जैसा इनका दोनों का रूप, बहुत सुस्त रीला संघ, जब वीणा पर तान फिरते थे तो लोगों का चित्त बर्बक खेच लेते थे। एक समय की बात है, रामचंद्र जी अयोध्या में है, यहाँ सीता जी वनवास में है, राजमहल छोड़ दिया है और राम अपने राजभवन में है, किंतु वहां पर चटाई बिछा करके रहते हैं, खाते हैं क्या, बस थोड़ा सा फल मूल। सीता जी जैसा जीवन व्यतीत कर रही है वैसा वही जंगल वहां पर रह करके ये जंगल में। सीता जी को सांत्वना देने के लिए वाल्मीकि जी हैं, अपने दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के सांत्वना मिल जाती है, राम को सांत्वना कौन दे, कोई देने वाला। बड़े दुखी हैं, दिन रात सीता जी के विरह में जल रहे हैं, कहें तो किस से कहें, हमारे समय से सीता जी की अपेक्षा राम ही अधिक दुखी थे। मन नहीं लग रहा, वशिष्ठ जी से कहा, जे प्रभु मैंने सोचा जो यज्ञ करने में हमारा मन लग जाएगा, इसलिए यज्ञ कराने की इच्छा हुई, कुछ समय के लिए तो भूल ही जाऊंगा, सीता जी को भी भूल जाऊंगा। वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, जे बेटा तू यज्ञ नहीं कर सकता। क्यों गुरु जी? सीता जी को लाओ तब यज्ञ कर सकोगे, अकेले नहीं कर सकते। तो ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं ला सकता तो यज्ञ नहीं कर सकता, फिर भी कोई उपाय बतलाइए, शादी कर लीजिए। आपके पिताजी के 360 रानियां थी, आप भी पिताजी से और दूसरी कोई स्त्री से विवाह कर लीजिए, सभी स्त्रियां आपसे विवाह करना चाहेंगी, लड़कियां। नहीं ये भी नहीं करूंगा। तो यज्ञ मत करो, मैं नहीं करूंगा, आप तो कराइए। अजय ऐसे नहीं, तो उपाय बतलाइए। उपाय है सीता जी की सोने की मूर्ति बनाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसको साथ में बाएं तरफ लेकर के यज्ञ करो। हाँ ये स्वीकार है, ठीक। सोने की सीता बनी और नमिषारण्य में बड़ा भर विशाल यज्ञ हुआ। सारी माता जी, गुरु जी और जितने रहस्य मार्ति इत्यादि, सुग्रीव नल नील इत्यादि जितने राम के परिकर थे, हनुमान जामवंत इत्यादि सभी का निमंत्रण गया, सभी लोग आए। होने लगा यज्ञ, दो सवेरे शाम को होता और सवेरे दोपहर में हरि कथा कुछ पुराणों की कथा होती, और इतने में लौकुश से एक दिन वहां आ गए और बड़े सुरीले कंठ से रामायण का गान करने लगे। एक तो राम जैसा सुंदर रूप, अभी उठता हुआ किशोर, 8-9 वर्ष का रूप, बहुत ही सुंदर गला भी वैसे, और ब्रह्मचारी का वेश, सिर के केशों को एकत्र करके बांध दिया जैसे रामचंद्र जी बांध करके दंडकारण्य में गए, और वीणा लेकर सुरीले कंठ से गायन कर, वो भी राजसभा में आकर सभी लोग गदगद हो गए। जब रामचंद्र जी का वनवास सुनाने लगे तो सबकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह निकल गया, सभी लोग इससे रामचंद्र जी भी रोने लगे, कैकेयी और कौशल्या मैया भी रोने लगी वनवास के समय, मानो यही हो रहा है अभी लीला ये हो रही है। जब लीला समाप्त हुई मैंने उनकी कथा समाप्त हुई उस दिन, उतने ही सर्ग तक, अभी वनवास के बाद में पिताजी का ये वनवास अभी नहीं हुआ था, अभी और सब रोज रोज सुनाते थे। तो कथा समाप्त होने पर, उनकी गान समाप्त होने के बाद में रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी इस बालकों से पूछो कि इसके बाप का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी मैया कौन है, जरा पूछो। और एक बात करो, सोने के थाल में मणियों से भरा हुआ, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ ये थाल ले जाओ, उनको दे दो, जो चाहे वही दे दो। लक्ष्मण जी गए, सोने के थाल में सब वस्त्र और सिरा मणि जवाहरात लेकर के गए और उनसे पूछा, बेटे ये बतलाओ ये तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे बाप का नाम मैया का नाम क्या है। लौकुश जो बड़े थे, लौ माने एक ही समय के, तो अभी लौ जी बोले, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं, ब्रह्मचारियों से माता पिता का नाम नहीं पूछना चाहिए, जो संसार छोड़ करके भगवान का भजन करने वाले हैं उनका माता पिता का नाम नहीं, उनका गुरु का नाम पूछो। हम लोगों से यदि कोई हमारे माता पिता का नाम पूछता है अन्याय करता है, हमने तो संसार का सब नाता छोड़ करके भगवान का शरण ले लिया है, इसलिए हमारे सर्वस्व तो हमारे गुरु जी हैं और प्रभु कृष्ण हैं, तो आपने ऐसा अन्याय करके आप जो पूछते हैं ये उचित नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बात ठीक ही कहता है, बस सिर नीचा हो गया। फिर पुकारते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि, वही हमारे सर्वस्व हैं। एक ब्रह्मचारी का जो मठवासी है उसका सब कुछ कौन होता है, गुरु होता है। वो घर में नहीं जाता लौट करके ब्रह्मचारी, वो सन्यासी घर में लौट करके नहीं जाती, जाता है तो वो उस कुत्ते के समान है जो टट्टी का करके और फिर उसी को खा लेता है, वो सुअर के समान है। उसको हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में उसको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई छोड़ो तो गुरु समझ बूझ करके छोड़ने, तो छोड़ मत, संसार में रह करके भजन करो, संसार में भजन करने वाले लाखों ने भगवान को पाया है। अरे महाराज जनक और सब गोप लोग, सुग्रीव जी और सब जितने हैं ये सब तो गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी भी तो गृहस्थ थे, यज्ञवल्क भी तो गृहस्थ हैं, इसलिए ऐसे मत छोड़ो समझ बूझ करके, जब तुम्हारा अधिकार हो जाए तब छोड़ो, आने तो फिर घर में मत जाओ, ये मेरा घर है, ये मेरी मैया है, ये बाप है, ये कहना तुम्हारा अन्याय है। तो तुम उस सुकर के समान हो जो अपने टट्टी करके अपने ही खाती हो, इसको बंतासी कहते हैं, बंतासी माने जो बमन करके उल्टी करके फिर उसको खा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल अधिकांश रूप में ऐसा देखते हैं, रोज रोज घर जाते हैं, कहीं रुपया कुछ मिलता है तो गुरु जी को एक आना देते हैं और 15 आना किसको देते हैं, अपने मैया बाप के पास में अपनी पहले वाली स्त्री है उसको भी दे आते हैं, घर का नाता नहीं छोड़ता। यह सब गड़बड़ है, कलयुग के सन्यासी लोग अधिकांश ऐसे ही होंगे, इसलिए समझ ना बुझना चाहिए। तो लक्ष्मण जी सुन करके दंग रह गए, उन्होंने सोने का थाल उनको दिया, जैसे बेटे इसको ले जाओ। क्योंकि इससे हमारा क्या संपर्क, गुरु जी के घर में केले के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, गंगा जी पासी में बैठी हैं, पानी पी लेते हैं, पहनने के लिए केले के वृक्ष के छाल हैं उसको पहन लेता हूँ, हमें क्या फिक्री शो काम, हमें रुपये पैसे से क्या जरूरत है, ये अपने खजाना में ही रखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अपनी प्रजाओं में बांट दो, हम तो बाल ब्रह्मचारी, हमको ये जरूरत है। ब्रह्मचारी का जीवन ऐसा होना चाहिए, विषय का अन्न खाएगा तो तुम्हारे चित्त भ्रष्ट हो जाएगा। विषय का अन्न मतलब विषय किसको कहते हैं, भगवान की सेवा करके भी भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, ये लोग विषयी हैं। इसलिए जब उन्होंने नहीं लिया, अस्वीकार कर दिया, तो और भी दंग करके दंग रह गए। ये दोनों बालक अपनी मैया के पास में वाल्मीकि आश्रम में लौटे, जब लौटे तो मैया वहां पर पलक पावड़े उनके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, कभी दरवाजे पर आती है, कभी कुटी के भीतर नहीं जाती है। आज कुछ देर हो गई विलंब, जाते ही दोनों बालकों को अपने दोनों गोदी में बैठा लिया। अरे बेटे आज इतना विलंब क्यों हुआ, देरी की तुमने कर। लौकुश ने कहा, मैया यहां पर एक राजा आया है और राजा यज्ञ कर रहा है, तो हम लोगों ने उनको वाल्मीकि जी का ये जो काव्य है उसको सुनाने लगे उस सब लोगों को, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। किंतु मैया एक बात हमने देखा, क्या देखा, देखा वहां पर एक सोने की मूर्ति हमने देखा, और सोने की मूर्ति कैसी थी, ठीक तुम्हारे समान थी, केवल वो बोलती नहीं थी और तुम बोलती हो, बस इतना ही अंतर। ये सुनते ही सीता जी के आंखों से आंसुओं की धारा गिरी। राजा राम ने रानी सीता का प्रत्याग किया हो या ऐसा हो सकता है, किंतु ये राम जी हमें कभी भी प्रत्याग नहीं कर सकते, उनके हृदय में मेरा सब समय जगह है, मेरी जगह। आंसुओं से सब जब हो गई तो उन दोनों बालकों ने कहा कि मैया रोने क्यों लगी, ये बात सुनकर के ये क्या समझ आती है जैसे इन्हीं के ये पति हैं। वो नहीं समझ, जब रोने लगी तो उन्होंने अपनी चद्दर से मैया का आंसू पोछा, किंतु वो तो रुकता नहीं। इधर में क्या हुआ, रामचंद्र जी ने वाल्मीकि को बुलाया, वाल्मीकि जी मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि सीता जी तुम्हारे पास में है, और ये जो दोनों बालक जो आए आपका शिष्य बतला रहे, ये कोई नहीं हमारे बेटे हैं, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। आप जो सोचेंगे और दूसरी बात हो सकती है, आप सब ठीक कह रहे हैं, सब बात ठीक है, हमारे यहाँ ही हैं और ये दोनों बालक आपसे हैं। अच्छा एक बात सुन, आप कल इसी समय में जिसमें कि बालक दोनों आए थे उसी समय इन दोनों बालकों के साथ में सीता जी को यहाँ पर ले आओ, हमारी आश्रम ला सकते हो, यदि जरूर ला सकता हूं। गए आश्रम में लौट करके सीता जी से कहा, बेटी राम तुम्हें बुला रहे, तुम्हारा कर्तव्य है चलना, उन्होंने ऊपर से जगत को दिखलाने के लिए तुम्हें छोड़ा, तुमको हृदय से नहीं छोड़ा, तुम उसे कभी विजुक्त हो ही नहीं सकते, तो चलो। जरूर चलूंगी। बस दूसरे दिन लक्ष्य उनको लव और कुश को लेकर के वहां पर पहुंची, राम के सामने जब गई सभी सारी सभा देखने लगी, सबकी नजर कहां गई सीता जी के प्रति। आगे आगे वाल्मीकि जी, सीता जी उसके पीछे, दोनों बालक उनके दोनों अंगुलियों को पकड़े हुए आ रहे हैं। राजसभा एकदम शांत प्रशांत होकर के देखने लगी आगे क्या होता है। जब आगे आकर के राम के सामने आई तो रामचंद्र जी ने कहा, सीते तुम पवित्र सब समय कभी अपवित्र नहीं, तुम्हारे ऊपर में हमारा संदेह भी नहीं है, किंतु लोगों के लिए मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रमाण हो कि नहीं तुम पवित्र हो। तुमने पवित्रता की प्रमाण लंका में दिया था, महाराज दशरथ खुद आए उस समय ऋषि महर्षि लोग आए, इंद्र आए और देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, बोला जैसे ये पवित्र हैं इनको ग्रहण करो। इस समय ग्रहण किया था। मैं चाहता हूं कि एक बार समस्त जनसभा के सामने तुम ये दिखलाओ जिससे कि तुम पवित्र हो। सर अभी भी पवित्रता की परीक्षा मुझे देनी है, एक बार दे देना अच्छा रहेगा। सीता जी ने कहा जी ठीक। उन्हें कि हे धरित्री, धरित्री मैंने पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी तुम मेरी मैया हो, यदि राम के अतिरिक्त मैंने कभी किसी का भी मन से भी स्पर्श किया हो तो तुम फट जाओ और अपनी गोदी में हमें ले लो। तीन बार कही ये बात और तीसरी बार पृथ्वी वहीं पर फट गई। सबके देखते देखते और नीचे से एक सोने का सिंहासन पर पृथ्वी देवी भूदेवी निकली और सीता जी को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई और नीचे चले गई पृथ्वी जी। हाहाकार सब सभा कर उठी, राम हाहाकार करते हुए धनुष बांध लिया, सब लोग रोने लग गए, लौकुश विलाप करने लगे, मैया तू कहाँ गई मैया, कौशल्या और सब माताएं रोने लगी, सारी सभा रोने लगी, राम भी रोने लगे, बोले कि पृथ्वी तू मेरी सास है, पिताजी पृथ्वी से ही पैदा हुई थी, आज तुम हमसे तुम अलग कर रही हो, ले जा रही हो, यदि सीताजी को नहीं लाएगी तो अभी धनुष मान उठाता हूँ, अभी तुम्हें विदीर्ण कर दूंगा। जिसमें धनुष मान उठाया उसी समय वाल्मीकि जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, अब आपकी लीला संगोपन का समय हो गया है, आप बिलाम मासी सीताजी आपसे पहले ही चली गई हैं, वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी लीला का समय समाप्त हो चुका, अब यहीं पर आप समाप्त कीजिए। राम अपने आंसुओं को पोंछा, सारी सभाओं को लेकर के लौकुश को भी अपने साथ लिए और अयोध्या गए और वहां जाकर के किस प्रकार से साकेत धाम में गए, ये सब रामायण में वाल्मीकि और सुखी। यहां पर एक चीज देखिए, राम ने सीता को छोड़ दिया, सीता जी ने राम को छोड़ा। आज देखिए आज का समय, पति स्त्री के लिए बिल लाता है और स्त्री से छोड़कर के दूसरे तीसरे चौथे के पास नहीं पहुंच जाती है और स्त्री बिल लाती है, पति भी उस स्त्री को छोड़कर के दूसरे एक दो तीन चार पांच छह सात जितना बार चला जाए कोई भी बात नहीं। आज समाज कहां से कहां तक पहुंच गया है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति पर विचार करके रखेंगे, इसको भी अपने जीवन आचरण करेंगे, वैसे ही भगवान का नाम करेंगे, आप जीवन में सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। हमारे यहाँ विधवाओं का पहले विवाह नहीं होता था, इसलिए कि विधवा होने पर भगवान को ही अपना पति मान करके उनका भजन करती थी और सारा परिवार उसकी सेवा करता था। आजकल भोग ही प्रधान हो गया, विवाह करो नहीं, विवाह के पहले ही किसी से प्रेम लग करके उसको बच्चा पैदा हो गया, विवाह पीछे हुआ या दूसरे के साथ में हुआ, पहले ये सब बातें नहीं थी, इसके गंभीर विचार थे। मनुष्य जीवन केवल भगवत भजन करने के लिए ही हुआ है। सुअर में भी सुकरी मिल जाएगी, सांप में भी सांपनी मिल जाएगी, कुत्ते को भी कुत्ती मिल जाएगी, सब जगह ये चीजें भोग है, इसलिए मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये परमार्थ के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा कर्तव्य क्या है, इसके लिए। इस पर आप लोग विचार करेंगे, मरने के बाद में सुई और सूता लेकर के भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं, लाख कमाओ गधे की भांति, लाख गधे जैसे कमाता है, जो कुछ होता है वो अपने आप नहीं खाता, दूसरों के लिए सब समय करता है, वैसे लाख आप काम कीजिए, ये एक पैसा भी आप साथ में नहीं ले जा सकते, इसलिए इसमें करते हुए भी भगवान का भजन करो, जीविका निर्वाह के लिए कुछ करना पड़ेगा, साधन भजन के लिए करो, किंतु भगवान का भजन करते हुए करो, यही हमारा उपदेश है, शास्त्रों का उपदेश है, तुलसी जी का उपदेश है, वेदों का उपदेश है। आज यही करा करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, यदि हमसे कोई कठोर भाषा निकल गई हो आप लोग हमें क्षमा करेंगे, किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने नहीं कहा, जो सबसे मैंने समझा है, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसी को मैंने कहा, आप लोग विचार करके देखेंगे कि हमने ठीक कहा है या गलत किया है, यदि ठीक कहा है तो उसको ग्रहण करेंगे और यदि ठीक नहीं किया है तो हमें क्षमा करेंगे। अभी इसके बाद में आरती होगी, इसके बाद में
thank you. तुम्हारी।